माता जी लोग देवक्या देवकी के जठरे जठर में गर्भम भ्रूण शेषाख्यम कृष्ण के अंश शेष नाम से विख्यात धाम अंश मामकम मेरा ही तथा उसको सन्निकृष्य निकाल करके रोहिण्या रोहिणी के जठरे गर्भ के भीतर जठर में सन्निवेशय बिना कठिनाई के स्थानांतरित करो। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तात्पर्य, कृष्ण के प्रथम अंश बलदेव हैं, जो शेष भी कहलाते हैं। भगवान का शेषावतार सारे ब्रह्मांड को धारण करता है और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी। भगवान ने जोग माया से कहा, चूंकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं अतः शेष अवतार पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित हैं, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके जिसमें पहले ही 6 असुर षडगर्भ वास कर चुके थे। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि ये षडगर्भासुर भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे? इसका उत्तर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, जो इस प्रकार है। समग्र सृष्टि तथा उसके व्यष्टि अंश भी भगवान की शक्ति है, विस्तार है। इसलिए भौतिक जगत में भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते। इसकी व्याख्या भगवान ने स्वयं भगवत गीता 9:4-5 में की है। मया तद इदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहम् तेज तेवस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्यमे जोगैश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभामनः। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। फिर भी हर सृजित वस्तु मुझ में टिकी नहीं है। मेरे जोग ईश्वर को तो देखो, यद्यपि मैं सारे जीवों का पालक हूं और सर्वत्र रहता हूं, किंतु मेरी आत्मा सृष्टि का उद्गम है सर्व खल इदम ब्रह्मा, हर वस्तु ब्रह्म अर्थात भगवान का अंश है। फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है और ईश्वर सर्वत्र है भी नहीं। हर वस्तु उन पर टिकी है और नहीं भी टिकी है। इसे केवल अचिंत भेद अभेद दर्शन द्वारा समझाया जा सकता है। फिर भी ऐसे सत्य को शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवत गीता 15:55 भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति जामंजस अस्मितत्वतः। भगवान को उनके असली रूप में केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकते, किंतु इस सिद्धांत को शास्त्रों के कथन से समझा जा सकता है। शुद्ध भक्त भक्ति योग की 9 विभिन्न विधियां संपन्न करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम दीप पद पर आसीन रहता है। इस तरह भक्ति को प्राप्त भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता। इतने पर भी भक्त सदा डरता रहता है कि भौतिक जगत में सानिध्य होने से उसे अनेक कलमश प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए वह सदैव भय के कारण चौकन्ना रहता है, जिससे उसका भौतिक सानिध्य क्रमशः घटता जाता है। प्रतीक रूप में माता देवकी का कंस से निरंतर डरना उन्हें शुद्ध बना रहा था। शुद्ध भक्त को सदैव भौतिक सानिध्य से डरते रहना चाहिए, इससे भौतिक सानिध्य में रहने वाले सारे असुरों का वध हो जाएगा, जिस तरह कंस के द्वारा षडगर्भासुरों का वध हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मरीचि मन से प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में मरीचि मन का अवतार है। मरीचि के 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत एवं मत्सर्य। भगवान शुद्ध भक्ति से प्रकट होते हैं, इसकी पुष्टि वेदों द्वारा की गई है। भक्तिर एवेन दर्शयति, केवल भक्ति से ही मनुष्य को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए देवकी भक्ति की प्रतीक है और कंस भौतिक भय का प्रतीक है। जब भक्त भौतिक सानिध्य से डरता रहता है तो उसका असली पद भक्ति प्रकट होता है, जिससे उसमें भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मरीचि के 6 पुत्रों का ऐसा भय द्वारा वध हो जाता है और मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, तो भक्ति के गर्भ में भगवान उत्पन्न होते हैं। इस तरह देवकी का 7वां गर्भ भगवान के प्राकट्य को सूचित करता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत तथा अमत्सर्य ये 6 पुत्र मार डाले जाते हैं, तो भगवान के प्राकट्य हेतु शेष अवतार उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में जब मनुष्य में उसकी सहज कृष्ण चेतना जागृत होती है, तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की यही व्याख्या है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बड़ा ही पावन दिन है। आज के दिन भगवान बलराम का आविर्भाव हुआ। भगवान बलराम आदि गुरु हैं और भक्ति का बल प्राप्त होता है बलराम जी से, तो इसलिए आज हमें बलराम जी का, आज ही नहीं डेली, लेकिन आज विशेषतः बलराम जी का चिंतन करना चाहिए और उनके संबंध में भागवत से उनके लीलाओं का पठन और श्रवण करना चाहिए। बलराम तत्व को जानना बहुत जरूरी है कि बलराम जी हैं कौन। ऐसे इससे पहले प्रायः बलराम जी भगवान के छोटे भाई के रूप में आए हैं। लक्ष्मणा अवतार में जब उन्हें परेशानी बहुत हुई तो उन्होंने कसम खाया कि अब मैं छोटा भाई बनकर नहीं आऊंगा, अब मैं बड़ा बनकर के आऊंगा। इसलिए बड़ा भाई के रूप में बलराम जी आए। ये सब तो लीलाएं हैं, लेकिन तत्व समझना बहुत जरूरी है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में बलराम जी के संबंध में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से मध्य लीला में श्रीपाद सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु बलराम जी के विषय में बताए हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। जितने भी अवतार हैं वे सब, उन सब का उद्गम जो है, आगार जो है, वो हैं कृष्ण। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन जब सुत गोस्वामी किए, उन अवतारों में कृष्ण बलराम का भी नामांकन कराए, नाम दिए, और समस्त अवतारों का वर्णन करने के बाद कहते हैं, जितना मैं अब तक से वर्णन किया हूं, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब तक से जितना जिन जिन नाम नाम गिना गिना करके अवतारों का वर्णन किया हूं, इनमें से एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो वर्णन किया उसमें कृष्ण का भी नाम है, लेकिन इन सब में से जो कृष्ण है वे स्वयं भगवान है। और लोग कौन है? च अंश, उनके अंश हैं, उनके पार्ट हैं। अंश, अंशांश, विभिन्नांश, स्वांश इत्यादि इत्यादि। भगवान वैभव प्रकाश और प्राभव प्रकाश दो रूप से लीला करते हैं। तो बलराम जी के विषय में बताया गया है कि बलराम जी कृष्ण के ही समान हैं, कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, षड ऐश्वर्य परिपूर्ण समस्त अवतारों के आगार कृष्ण हैं। ताहारो द्वितीय देह श्री बलराम, उनका द्वितीय देह, दूसरा जो देह है वे बलराम हैं। भगवान के दो देह, एक तो स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण और दूसरे जो हैं बलराम हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरि करें कृष्णेर शिवान। एकमात्र ईश्वर कृष्ण हैं और सब लोग उनके सेवक हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत, जेके जैसे नचाई से तैछे करे नृत। ये बात है सामान्य जीवों के लिए, लेकिन भगवान के जो अंश हैं वे अंश भी यहां बलराम जी के लिए स्पेशली कहा गया है कि बलराम जी मूल संकर्षण हैं और पांच रूप से भगवान का, कृष्ण का सेवा करते रहते हैं, पांच रूप से सेवा करते हैं। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल देह मात्र का भेद है। एक तो है कि कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी गौर वर्ण के हैं। दूसरा, कृष्ण सेव्य हैं और बलराम जी सेवक हैं, सेवा करते हैं। किसी भी अवतार में, चाहे लक्ष्मण के रूप में आए, बलराम के रूप में आए, वो सेवा ही करते हैं। तो यहां पर महाप्रभु कहते हैं कि, सॉरी, कृष्णदास कविराज कहते हैं, पंच रूप धरि करें कृष्ण रे सेवा। पांच रूप से भगवान का वे सेवा करते हैं। वो पांच रूप कौन कौन है तो कहते हैं, आपन आपने करे न कृष्ण लीला रो सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चार काय। एक तो वे भगवान के नित्य लीला के सहायक हैं। गोलोक धाम में भगवान का जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद रूप है, सत चित और आनंद। इस सच्चिदानंद में जो सत है वो भगवान है। किसका फोन बज रहा है? जो सत है वो भगवान है। इसीलिए उन भगवान के लिए जब भी सत शब्द आता है तो भगवान के लिए, सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत का ध्यान करता हूं। तो सत कृष्ण है, जो चित हैं ज्ञान स्वरूप वे हैं बलराम जी, और जो आनंद हैं वो हैं श्रीमती राधिका। भगवान की तीन शक्तियां जो हैं, संहित संबित और आह्लादिनी, इसमें से जो संबित शक्ति हैं वो हैं कृष्ण, जो संहित शक्ति हैं वो हैं बलराम जी, और आह्लादिनी जो शक्ति हैं वो हैं श्रीमती राधिका। संहित का मतलब जुटाना और संबित मतलब जोड़ना बनाना। मैं प्रायः उदाहरण देता हूं स्वीट राइस का, खीर का। खीर खाते आप लोग ना? आज नहीं मिलेगा, बाद मिलेगा, नहीं तो क्लास के बाद खीर मिलता है। खीर बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट, चावल, बर्तन, आग, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, वो व्यवस्था जो करने वाला है वो है बलराम जी। वो बलराम जी, और उसका रूप कौन देता है? स्वीट राइस का रूप कौन देता है? वो रूप देते हैं स्वयं श्री कृष्ण। और स्वीट राइस कैसा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, इसका पता लगाना होता है तो कृष्ण पता लगाते हैं श्रीमती राधिका के साथ। वो आह्लादनीय शक्ति है, आनंद की प्राप्ति जो है वो राधिका के द्वारा। तो जो भी लीला में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसका व्यवस्था करना बलराम जी का काम है। इस रूप से वे सेवा करते हैं। आपे आपने करे न कृष्ण लीला रो सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चार काय। तो भगवान के लीला में सहायता करते हैं, सृष्टि के लिए जो ये तीन विष्णु हैं, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही, ये तीनों बलराम जी के ही अंश हैं। और इस प्रकार से भगवान के सृष्टि लजय सृष्टि गौनिता राधारास बिहारी सीताराम चंद्रमान के जय, इस सृष्टि लीला में भगवान का सहयोग करते हैं बलराम जी, कारणोदक गर्भोदक और क्षीरोदक शाही विष्णु के लिए। सृष्टि आदि सेवा तार आज्ञा रो पालन, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन, और वही बलराम जी शेष नाग के रूप में सृष्टि का धारण करते हैं, सृष्टि भी करते हैं और पृथ्वी का धारण भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये चार रूप हुआ, तीन जो हुआ वह है कर्णोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही विष्णु, उसके बाद शेषनाग, और चौथे जो हैं चार हुए, पांचवें जो हैं एक ही स्वरूप देह भिन्न मात्र काय आद्य काया बहु कृष्ण लीला रो सहाय। और आध्यात्मिक जगत का भी सृष्टि जो होता है वह भी होता है बलराम जी से ही, इसलिए कृष्ण के बाद बलराम, बाद में चतुर्वी हो, उसमें संकर्षण है महासंकर्षण, वे स्वयं बलराम जी हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड दोनों का सृष्टि एक तरह से देखा जाए तो बलराम जी के द्वारा यह संपन्न होता है। बलराम जी इस चतुर्युगी में, द्वापर युग में आए थे। भागवत महापुराण के दशम स्कंध में बलराम जी के लीलाओं का वर्णन किया गया है। दशम स्कंध के प्रथम अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से छह प्रश्न किए। प्रथम प्रश्न था कि कृष्ण और बलराम जदुवंश में आकर के भक्तों के प्रसन्नता के लिए जो जो लीला किए उन लीलाओं का स्वादन कराइए। दूसरा प्रश्न था रोहिण्य तनय प्रोक्तो राम संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय दशम स्कंद के प्रथम अध्याय का ये श्लोक संख्या आठ है। श्लोक संख्या आठ में प्रश्न पूछे हैं परीक्षित कि मैंने सुना है कि बलराम जी तो रोहिणी के ही पुत्र हैं, रोहिणिया तनय प्रोक्त ऐसे कहा गया है, मैं ऐसा सुना हूं, और प्रभुपाद जी भी इस श्लोक के तात्पर्य में श्री स्वामी का कोट करते हुए कहते हैं भगवान का शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करता है और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी। माता रोहिणी बलराम जी की शाश्वत माता है। तो इसका मतलब यह है कि परीक्षित महाराज इन कथाओं से अवगत थे, सुने थे, इसलिए कहते हैं रोहिण्या तनयः प्रोक्तो, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा विख्यात है कि बलराम जी बलदेव की माता रोहिणी थी और उन बलदेव का डिफिनीशन भी देते हैं, अलग अलग बलदेव, विष्णु का भाई है उसका भी नाम बलदेव, इधर है कहां पर है इधर बलदेव चला गया है, उसका भी नाम बलदेव है, तो इसके मम्मी का रोहिणी नाम नहीं है, तो इसलिए यहां पर क्लियर करते हैं कि वो बलदेव कौन है। संकर्षण त्वया, वे संकर्षण हैं, यानी चतुर्व्यूह में जो संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वासुदेव हैं उसमें संकर्षण हैं वे बलराम जी हैं। कहते हैं लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो गया। तो क्या कंफ्यूजन? त्वया आप इसे बतलाइए, देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना। अरे आपने तो अभी बताया कि वो देवकी के गर्भ में सातवें गर्भ के रूप में आए, तब देवकी के गर्भ में आए तो वहां से छलांग लगा करके रोहिणी गर्भ में कैसे चले गए? यानी कहते देहांतर बिना, बिना देह बदले दो मां के बेटे कैसे हो गए? हम लोगों को यदि दो माह का बेटा होना यानी गर्भ से ही उत्पन्न होना हो तो एक जन्म को छोड़ना, एक देह को छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली मां ने इंसल्ट किया था ना, सुरुचि ने कहा यदि तुम महाराज उत्तानपाद के जंघे पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, यानी इस देह को छोड़ दो और पुनः जन्म लोगे तब यहां बैठ सकते हो। लेकिन बलराम जी बिना देह बदले दो मां के गर्भ से कैसे जन्म लिए? इसे गर्भ शब्द आया, देव क्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना, बिना देहांतर बिना देह बदले बलराम जी दो मां के गर्भ से कैसे प्रकट हुए, ये प्रश्न था। अब इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए इस श्लोक में यहां पर इसी प्रश्न का उत्तर दिए हैं किस प्रकार से हुआ। जब भगवान जब लीला विहार करने के लिए यहां पर आना चाहते थे, अब छह गर्भों का ध्वंस कंस कर चुका था। भागवतम में इस षट गर्भों के विषय में बताया गया है कि ये लोग पूर्व जन्म में मरीचि के पुत्र थे, लेकिन ब्रह्मा के श्राप से ये लोग हिरण्यकश्यपु के पुत्र बने, और हिरण्यकश्यपु के श्राप से, हिरण्यकश्यपु का श्राप था कि जाओ तुम लोगों को तुम्हारा बाप ही मारेगा, तो हिरण्यकश्यपु के नाती थे, तो हिरण्यकश्यपु का पुत्र था कालनेमी, और कालनेमी का अंश हुआ कंस, और कंस इन षड गर्भों को मारा। ये श्राप हुआ था सतयुग में, लेकिन इन लोगों का वध हुआ द्वापर में। प्रश्न उठता है कि वो थे कहां पर? श्रीपाद जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में वर्णन करते हैं कि ये लोग बलि महाराज के साथ में पताल लोक में थे और द्वापर में आए और मारे गए। अब छह लोग, छह के छह असुर थे। असुर का जो डिफिनिशन भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय में बताए हैं, आप लोग जानते होंगे कि असुर का डिफिनिशन क्या है, उन लोगों का चाल चलन क्या है। कैसे रहते हैं इत्यादि कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुर असुर न शौचम न चापी चचारो न सप्ततेषु विद्यते। उसमें से एक शब्द मैं लेता हूं न शौचम। असुर वह है जो अपवित्र रहता है, जो गंदा रहता है, नहाता नहीं है वो असुर ही है, असुर का नाती पोता छोटा वाला है, जो मुंह नहीं धोता है, ब्रश नहीं करता है, असुर है, जो कपड़ा गंदा पहना रहता है वो भी असुर, आसुरी प्रवृत्ति है। उतना ही नहीं, सुबह में उठ करके जो अपना बिछावन सफाई नहीं करता है वो भी असुर का ही थोड़ा अंश है, हैं? उसी पर 10 दिन तक सोते रहते हैं, वो अपवित्र है, सब कपड़ा फेंक देता है, रूम गंदा कर देता है, तो असुरों को उसमें अच्छा लगता है, खा करके केला का छिलका वहीं फेंक देंगे, भले मलेरिया हो आश्रम में दूसरा बात है, लेकिन वहीं फेंक देंगे, गंदगी फैलाएंगे, ये आश्रिक प्रवृत्ति है। और दैविक प्रवृत्ति क्या है? वो पवित्र रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार की पवित्रता होती है, बाहर की पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। बाहर की पवित्रता स्नान इत्यादि कर करके, स्वच्छ कपड़ा पहन करके, अपना जहां रहते हैं उस निवास को स्वच्छ रख करके इत्यादि इत्यादि। और आंतरिक पवित्रता होती है भगवान नाम लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो असुर लोग जहां रहते हैं उसका गंदा फैला कर रखते हैं, उनका निवास स्थान, और भगवान गंदे स्थान पर नहीं आते हैं। तो देवकी के गर्भ में लोग आ गए थे, वहां भी गंदगी फैला दिए थे। कामे है गंदगी फैलाना, जहां जाएंगे गंदगी फैलाएंगे, चाहे मंदिर हो, चाहे आश्रम हो, कुछ भी हो, चाहे देवकी माता का गर्भ, वो भी मंदिर ही है देवकी माता का गर्भ, उसको गंदा कर दिए थे। अब भगवान वहां पर कैसे आएंगे गंदे जगह पर? तो म्युनिसिपैलिटी वालों को आना चाहिए सफाई करने के लिए, यानी सफाई करने वाला कोई होना चाहिए, पहले सफाई करना चाहिए। तो बलराम जी आए थे सफाई करने के लिए, बलराम जी का काम था सफाई करना। वे आए थे माता देवकी के गर्भ में उस स्थान को साफ करने के लिए। जब सफाई उफाई हो गया तब कहते हैं एक के तम अनुरुंधानाम ज्ञातयः परियुपासते हतेषु षडसुबालेषु देवक्या अग्रसेनिना। उग्रसेन का पुत्र कंस ने जब 6 पुत्रों को मार लिया, खत्म कर डाला, उनका मुक्ति कर दिया, एक तरह से मुक्ति नहीं मार डाला, मुक्ति बाद में हुआ है, तब भगवान जोग माया को आदेश दे रहे हैं। कहते हैं सप्तमो वैषम धामम इमानंत प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनम। कहते हैं हे जोग माया, देवकी का जो 7वां गर्भ है वैषम धामम, वे वैष्णवों के आश्रयदाता हैं, यानी गुरु हैं, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, और ये मेरे ही अंश हैं, कोई मेरे अंश हैं। सुदगन गर्भो बहु अदेव क्या, और ये अनंत नाम से भी जाने जाते हैं, गर्भो बहु अदेव क्या हर्षो कविवर्धनम। ये देवकी को के गर्भ में जो स्थित हैं, ये हर्ष और शोक दोनों के कारण बनेंगे। हर्ष, जहां वैष्णव विष्णु आते हैं वहां पर हर्ष ही होता है। वर्णन किया गया है इसी भागवतम में कि जब बलराम जी आए देवकी के गर्भ में तो देवकी का स्वरूप परिवर्तित हो गया था, वहां पर अनायास ही उस आभा से, देवकी के आभा से सब स्थान प्रकाशित रहता था, और जो पहरेदार लोग थे कंस को बता दिए थे। कंस वेटिंग कर रहा था कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए। 7 महीने तक बलराम जी देवकी के गर्भ में रहे। अब उसके बाद भगवान अब स्वयं आना चाहते हैं, इसलिए जोग माया से कहते हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे भद्रे। जोग माया को भगवान कहते हैं कि हे देवी तुम्हारा कल्याण हो। क्यों कल्याण हो? क्योंकि वो भगवान की सेवा करने जा रही थी। जो भी भगवान का सेवा करता है उसे कल्याण होता है। असली कल्याण है भगवान का सेवा करना, भगवत कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, प्रैक्टिकल भगवान का सेवा करना, भजन क्रिया। जो भजन क्रिया में लगा रहता है उसका कल्याण है। देखिए जोग माया यहां पर सेवा करने जा रही है, जोग माया वहां 16 माला जप करने नहीं जा रहे, मंदिर ज्वाइन नहीं करो, सेवा करने जा रही है। कहते हैं गक्ष, भगवान आदेश दे रहे हैं, गक्ष देवी ब्रजम भद्रे। भगवान जोग माया को ब्रज में जाने का आदेश दे रहे हैं। मथुरा जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? मथुरा बड़ा खतरनाक जगह है। मथुरा में यदि जोग माया गई होती, गई भी बाद में गई, तो कंस ने क्या किया आप लोग जानते हैं ना? कंस ने क्या किया? मारने का प्रयास किया ना। तो जोग माया यदि वहां गई होती तो कंस मारने का प्रयास करता। भगवान कहते हैं हे देवी, तुम देवी हो, तुम दोगी, किसी से लेने वाली नहीं हो, देने वाली हो, आलस्पिशियसनेस देने वाली हो, भद्रे तुम्हारा कल्याण हो। कहां जाओ? ब्रज में जाओ, क्योंकि तुम वहीं पर सुखी रह सकते हो। मथुरा में अभी सुखी नहीं रहोगी। कैसे ब्रज में सुखी रहोगी? तो ब्रज का उपाख्यान दे रहे हैं, कहते हैं गोप गोभीर अलंकृतम। गोप ग्वाल गोभी अलंकृतम, गौओं से, ग्वाल बालों से ब्रज कैसा है? अलंकृत है। ब्रज में गौवें हैं, ग्वाल बाल हैं। जिस जहां पर ग्वाल बाल हो, यानी गाय का रक्षा करने वाले, गो रक्षा करने वाले, और जहां गाय हो, वहां पर उस स्थान पर कल्याण ही कल्याण है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे जिस व्यक्ति के पास 2 एकड़ जमीन हो और 2 गाय हो, वो संसार में सबसे सुखी व्यक्ति है। आजकल 2 बेडरूम और 2 कुत्ता लोग रखते हैं खुशी होने के लिए। खुशी नहीं, कुत्ता भी भौंमो करता है और पति पत्नी भौंमो करते हैं, पूरा परिवार भौंमो करता रहता है। जब खुशी रहना है, कल्याण, असली कल्याण चाहिए, जब श्रेयस चाहिए, तो चाहिए गोपालन करना। ब्रज में गोपालन होता था, इसलिए ब्रज में कल्याण ही कल्याण था। भगवान जोग माया को भेज रहे हैं कि तुम्हारा भी कंस के राजधानी में कल्याण नहीं होगा, वहां पर जाओ। रोहिण्य वसुदेवस्य भार्या ते नंद गोकुले, उस ब्रज को नंद गोकुल, यानी गोकुल ब्रज में जो गोकुल जगह है जहां के राजा नंद जी हैं, तुम वहां जाओ। वहीं पर वसुदेव की एक पत्नी है जिसका नाम है रोहिणी। रोहिणिया वसुदेवस्य, वसुदेव कस्य? वसुदेवस्य। किसकी है वो? वो वसुदेव की है भार्या। ते नंद गोकुले, वो नंद गोकुल में निवास करती है। जब कंस अत्याचार कर रहा था तो वसुदेव की जो पत्नियां थी वे अलग अलग स्थानों पर निवास करती थी, केवल देवकी ही थी उस समय वसुदेव जी के साथ में थी। उसी बात कहते हैं अन्याश्च कंस सम विघ्नः विवरेषु वसन्ति, और अन्य जितनी पत्नियां हैं वो कंस के भय से विभिन्न स्थानों पर निवास कर रही हैं। वसुदेव जी के 12 पत्नियां थी, 12 में से एक पत्नी वसुदेव जी के साथ में थी और 11 अन्यत्र थी। महाराज बहलिक, हस्तिनापुर नरेश महाराज संतनु के भाई थे बहलिक। बहलिक की 5 पुत्रियां थी, रोहिणी, इंद्रा, बैसाखी, भद्रा, सुनामनी, और इन 5ों का विवाह हुआ था वसुदेव जी से, जिसमें प्रथम पत्नी थी रोहिणी। और जो अन्य 7 पत्नियां थी उसमें से 5 पत्नियां जो थी वो देवक की पुत्री थी, वे थी क्रमशः सहदेवा, शांति देवा, श्री देवा, देवरक्षिता, ब्रिक देवा, उपदेवा तथा अंतिम पुत्री थी वह थी देवकी। और इनकी दो दासियां थी जिसका नाम था सुतनु और बड़वा, ये दोनों दासियां थी, इनसे ही वसुदेव विवाह किए थे। तो सब मिलाकर के 12 पत्नियां थी। तो वहीं सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में कहते हैं, अन्याश्च संविघ्नः, अन्याश्च अन्य जो पत्नियां हैं देवकी के अलावा, रोहिणी तो रहती है नंद गोकुल में और अन्य पत्नियां अन्यंत रहती है, विवरेषु वसन्ति कंसं विघ्नः, कंस के भय से अलग अलग जगह पर निवास करती है। तो हां जोड़ करके अब जोग माया भगवान से पूछ रही है कि मैं जा करके वहां करूंगी क्या, आप इतना अच्छा परिचय दिए कि रोहिणी वहां पर निवास करती है, गोकुल बड़ा अच्छा जगह है, रहने योग्य जगह है वृंदावन, तो वहां मैं जाकर करूंगी क्या। तो भगवान कहते हैं, देवख्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत् संकृष्य रोहिणिया उदरे सन्निवेशय। देवक्या जठरे गर्भ, यह जो गर्भ है देवकी के गर्भ में बलराम जी नहीं थे, गर्भ में वे षडगर्भ लोग आए थे, लेकिन बलराम जी कहां पर थे, जठरे। जठरे सब समझते हैं आप लोग, तीन प्रकार की अग्नि होती है ना, कौन कौन तीन अग्नि है, जठराग्नि याद है ना, पता है उसे क्या होता है जठराग्नि से ना, भूख लगता है, वो अग्नि है और बलराम जी अग्नि के सोर्स हैं। यदि बलराम जी देवकी के गर्भ में गए होते तो देवकी के गर्भ जल करके भस्म हो जाता। तो देवकी के जठर स्थान पर जहां पर वह आग जलता है उस स्थान पर थे। मछली पानी में रहने वाले जंतु है, हरे कृष्ण मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में रखो तो मर जाएगी तुरंत, उसको पानी ही चाहिए। तो बलराम जी गर्म स्वभाव के हैं थोड़ा, तो उनको वैसा ही स्थान चाहिए, तो उनको जठर में, इसलिए सुखदेव को स्वामी क्लियर कहते हैं, देवक्या जठरे गर्भ, देवकी के जठर में जो गर्भ था वह कौन है, शेष आख्यम, उसका नाम क्या है, शेष। वो है कौन, धाम मामक, मेरे निवास है, मेरे बेड हैं, शेष नाग भगवान सोते हैं ना, मेरा निवास है। भगवान कहते हैं, तो कहते ठीक है, वो भी समझ गई मैं, मुझे करना क्या है बतलाइए। कहते तत् उस बालक को, उस शेष को जो कि जेवटकी के जठर में स्थित हैं, सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट 7 महीने का बालक है, तुम ऐसे निकालना सन्निकृष्ट, अच्छे तरह से निकालना कि देवकी को पता भी न चले, पेन न हो, प्रसर का प्रसव का पेन न हो, दर्द न हो। और क्या करना, रोहिणिया उदरे सन्निवेश, और रोहिणी के गर्भ में उसको अच्छे तरह से रख देना कि रोहिणी को पता भी न चले। एक आचार्य कहते हैं कि रोहिणी के गर्भ में 7 महीने का एक बालक था, उस समय दोनों संकर्षण के अंश थे, और ये जब संकर्षण वहां आने वाले थे तो वे संकर्षण इनसे मिल गए। और जी गोस्वामी कृष्ण के लिए भी यही कहे हैं, लेकिन अन्य गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, रोहिणी के गर्भ में केवल हवा था, कभी कभी हवा पेट में हो जाता है, पेट फूल जाता है ना, कम खाते हैं, खाते नहीं, हवा फूल जाता है, अनुभव तुमको नहीं, गैस नहीं होता कभी कभी, तब तुम पक्का आदमी है, गैस होता है तो पेट फूल जाता है। तो 7 महीने तक गैस था, और जोग माया ने उस गैस को क्लियर कर दिया और बलराम जी को ला करके स्थापित किया। प्रश्न उठता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कराया, क्योंकि बलराम जी वहां किस विशेष कार्य के लिए आए थे, अब उनका काम खत्म हो गया था। प्रभुपाद जी यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए कहते हैं कि चूंकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं, अतः शेष अवतार पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी, सफाई का काम पूरा कर दिए, अब उनका काम खत्म हो गया, अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। बस तो जोग माया काम था कि वहां से उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थित कर देना। प्रश्न उठता है, भगवान ने ऐसा क्यों कराया, क्या तकलीफ था, बलराम जी आ जाते तो क्या तकलीफ था। उसके कई एक कारण थे। एक कारण यह था कि भगवान कंस को शांति से जीने देना चाहते थे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। यदि वो जो सातवां गर्भ था, यदि वो जन्म ले लेता तो आठवां आने वाला है तो कंस बड़ा डिस्टर्ब होता कि अब तो मेरा काल नजदीक आ रहा है। तो कंस को भ्रम में रखने के लिए भगवान बलराम जी को वहां से हटा दिए, क्योंकि जब किसी बालक का पांच बच्चे हैं और एक बच्चा मर जाता है तो बोले कितने भाई हैं, तो कहते हैं चार भाई है, कोई नहीं बोलता हाँ पांच भाई हम थे एक मर गया, ऐसा नहीं, और अभी जन्म भी नहीं हुआ था इसके पहले ही। तो कृष्ण सातवें बालक हैं कि आठवें बालक हैं, इसको संदेह में कंस को रखने के लिए भगवान ने कर दिया। दूसरा बात, यदि संकर्षण बलराम जी देवकी के गर्भ से आते और कंस निसंदेह मारता, छह बालकों को मार चुका था, सातवें को मारने आता, यदि वह बलराम जी पर हाथ लगाता तब क्या होता है? बलराम जी पर कंस हाथ लगाता तो क्या होता, गया था काम से ना, तो भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, बलराम जी सब काम कर लेते। तो भगवान नहीं चाहते थे कि यह काम है, मेरा काम है मैं करूंगा, बलराम जी का जो काम है उतना कर लिए, उनका काम सफाई करना, सफाई अब कर लिए और हमारा काम हुआ। इसलिए यहां पर प्रभा जी कहते हैं चूंकि मैं देवकी के घर में जा रहा हूं, वो तो शेषा अवतार पहले ही वहां योग्य, और उन्होंने वहां मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है, बस एडवांस पार्टी थे, काम खत्म हो गया, अब चले वहां से। दूसरा कारण यह है कि यदि मान लीजिए एक सेकेंड के लिए कि आकाशवाणी ने कहा था कि ए हरि बोल, कथा सुनो, क्या पढ़ रहे हो, बैठो, क्या बोल रहा था मैं, आकाशवाणी ने कहा था कि आठवां गर्भ देवकी का आठवां गर्भ काल होगा, तो आकाशवाणी झूठी हो नहीं सकती है। यदि बलराम जी रहते और आठवां गर्भ काल होता, यानी कृष्ण आते तो कृष्ण मारते, तो बलराम जी रहते, तो बलराम जी को यदि कंस मार देता, एक सेकेंड के लिए मान लो, यदि मार देता तो पृथ्वी किस पर टिकती, सब राधन में चले जाते, कंस भी चला जाता। तो भगवान अच्छा व्यवस्था किए कि कंस को वहां, सॉरी, उसको वहां से हटाए। तो जोग माया को भगवान आदेश दिए और जोग माया भगवान को लाई। चूंकि बलराम जी भगवान की क्रिया शक्ति हैं, ये मूल भक्ति तत्व हैं, कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं। अब बलराम जी जिस वंश में आए उसका परिचय सुनना चाहिए। भागवतम के नवें स्कंद में वंश का ही वर्णन किया गया है, तो हरिवंश पुराण में और नवें स्कंद में बलराम जी के वंश का वर्णन परिचय दिया गया है। ये बलराम जी विष्णु वंश में आए थे और विष्णु वंश में जदु नाम के एक राजा हुए, उनके पुत्र हुए क्रोष्टा। क्रोष्टा की दो पत्नियां थी, माद्री और गंधारी। क्रोष्टा और माद्री से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे थे युधादि और देवमीड। युधादि के पुत्र हुए विष्णी और अंधक। विष्णी के पुत्र हुए स्वफलक और स्वफलक के पुत्र हुए गांधनी, जिन्हें अक्रूर जी के नाम से जाना जाता है। तो अक्रूर जी के 15 भाई थे और एक बहन थी जिसका नाम था बरांगना। अब उधर देवमीढ़ का विवाह हुआ नागकन्या से, उसका नाम था अश्वमकी। उसके पुत्र हुए सूरसेन और सूरसेन का विवाह हुआ मईसा, जो भोज राजकुमारी थी। सूरसेन और मईसा से 10 पुत्र और 5 कन्या उत्पन्न हुई। ये 10 पुत्रों में से सबसे बड़े थे, सबसे बड़ी पुत्री थी वह थी पृथा। उसके बाद हुए अनकदुंद भी वसुदेव। तो पृथा नियम भोजराज को सूरसेन ने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी मेरा पहला संतान होगा मैं दे दूंगा तुम्हें। तो अब पृथा को वे दे दिए, तो बाद में वो बनी कुंती। कुंती भोज के यहां गई थी। एनीवे 10 पुत्र थे अनकदुंद भी वसुदेव जी, देवभाग, देवस्रवा, अनागृष्टि, कनवक, बसावन, ग्रिंजीय, श्रृंजीय, श्याम, समिक, गंडोस। ये 10 पुत्र हुए और 5 पुत्रियां थी पृथु, श्रुतदेवा, पृथुकीर्ति, श्रुतस्रवा और राजादिदेवी। ये 5 कन्याएं थी। ये 5 कन्याओं का वंश इस प्रकार से चला। पृथा का विवाह हुआ महाराज पांडु से, जिसके 5 पुत्र हुए, मुख्य करके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती से हुए और माद्री से नकुल सहजे हुए। लेकिन वो भी मंत्र जो था पृथा ने दिया था, इसलिए कुंती के ही इन लोगों को कौंतेय ही कहा जाता है। श्रुतदेवा का विवाह हुआ जुग्रुहु, पृथुकीर्ति का विवाह हुआ करुष नरेश, उनका पत्र हुआ करुष नरेश दंतवक्र, जो पहले हिरणाक्ष था, और भद्रा नाम की एक कन्या हुई जिसका विवाह कृष्ण से हुआ बाद में। श्रुतसरवा का विवाह हुआ चेदिनरेश से, जिसका पुत्र हुआ शिशुपाल, जो हिरणकश्यपु था पहले, और राजाधि देवी जो थी उसकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था मित्रविंदा, जिसका विवाह हुआ कृष्ण से बाद में। और जो 10 पुत्र थे उसमें से वसुदेव जी जो हैं उनकी 14 पत्नियां थी, जिसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया। वसुदेव जी और रोहिणी, इनसे 8 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। ये 8 पुत्र हैं बलराम, सारथ, सठ, दुर्दम, दमन, शभ्र, पिंडारक, उसीनर तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। चित्रा गंधर्व थी, गंधर्व कन्या थी, और जन्म लेते ही कुछ समय तक थी और बाद में उसका देहांत हो गया। लेकिन मरते समय उसे बड़ा दुख हुआ और वो भगवान के लीला में भाग लेना चाहती थी, और इसी का चिंतन करते हुए वह मर गई। और वही चित्रा बाद में सुभद्रा के रूप में जन्म ली। तो इस प्रकार से वसुदेव और रोहिणी को 8 पुत्र और 1 पुत्री जन्म ली थी। दूसरे जो वसुदेव जी के जो भाई थे देवभाग, उनके पुत्र हुए उद्धव, देवश्रवा के हुए शत्रुघ्न जो बाद में एकलव्य बने, और उसी प्रकार से कृष्णा और गंधारी के संतान में जो उत्पन्न हुए उस वंश में वे थे सात्यकी। तो इस प्रकार से वंश का वर्णन किया गया है नवम स्कंद में और हरिवंश पुराण में वहां से है। तो इस प्रकार से बलराम जी रोहिणी के गर्भ से आए, रोहिणी का पुत्र हुए। बलराम जी के विषय में शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि उनका स्वरूप क्या था, कैसे थे। शुभ्राम सुवक्त्रम तड़िदालिलोचनम नवाब्धकेशम श्रद विग्रहम भानु प्रभाव तमसुत रोहिणी ततश्च युक्तम सहिदिव्य बाल। गोपाल चंपू में ये वर्णन आता है कि शरदकालीन मेघ के समान श्वेत वे थे, उनका विग्रह था। तड़िदाली या विद्युत पुंज के समान उनका आंख था, लोचनम नवाब्द केशम, और नूतन जलधार के समान बड़ा सुंदर उनका केश था। भानु प्रभाव पूर्ण चंद्रमा के समान चंद्रमुखी थे, ये थे रोहिणी नंदन। स ए स च अशित वर्ष शित वर्ष सदजनुज सुदीप्त तनुज तजनुज पालित धेनुको दलित धेनुक प्रलंब बाहू प्रलंब घातक घात घातयिता स्वयं राम नामा राम रमति द्विविध विदारयिता च भवति इति। गर्गाचार्य जब बलराम जी को देखे तो कहते हैं यह गुण विशिष्ट में इसके समान अवर्चनीय कोई नहीं होगा, इसके समान और कोई गुण वाला नहीं होगा, ये शुक्ल कांति से युक्त शिव विग्रह वाला यह बालक है। सद अनुज, सद मतलब सुंदर, अनुज मतलब अनुज, सुंदर अनुज से युक्त होगा। कृष्ण जो हैं वो अनुज हैं बलराम जी के, और ये सुंदर अनुज हैं, तो कहते हैं सुंदर अनुज से यह युक्त होगा। लेकिन सुदित सुदित दनुज और यह दनुजों का यानी असुरों का यह विनाश करने वाला होगा। पालितो धेनु को, वो गौओं का पालन करेगा, लेकिन दलित धेनु का, लेकिन धेनु का असुर का वध करेगा। प्रलंब बाहु, इसका बाहु बड़ा बड़ा है, लेकिन प्रलंब घातयिता, लेकिन प्रलंबासुर को यह हनन करेगा। स्वयं राम नामा, इसका नाम जो है वह होगा राम, बलराम, ये राम नाम। राम रमति द्विविध विदारयति, लेकिन राम में जो रमण करने वाला था द्विविध, उसको यह खत्म करेगा, विदार करेगा यानी मार डालेगा। च भवति इति ज्योतिषी विद्वंत भास्त, इस प्रकार से ज्योतिषियों ने गर्गाचार्य आदि ने बलराम जी के विषय में वर्णन किया। अब बलराम जी के कई एक लीलाएं हैं, उसमें से प्रथम लीला जो है वह धेनुकासुर का वध है। भागवत महापुराण के 15वें अध्याय में वर्णन किया गया है दशम स्कंद के धेनुकासुर के वर्णन का। जब भगवान पौगंड अवस्था को प्राप्त किए, जब